नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं में ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन में आयोजित पहले लई बांगो सेंट्रल सोलोंग गृह समारोह में भाग लेते हुए युवा पीढ़ी से अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश में आज विभिन्न विवेकानंद केंद्र विद्यालयों में सार्वभौमिक बंधुत्व दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आगामी जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक की तैयारियों के मद्देनजर लोअर सुबनसिरी जिला प्रशासन ने अधिकारियों और स्थानीय हॉस्पिटैलिटी संचालकों की एक बैठक गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पीडी सोना ने तवांग में आयोजित होने वाले 14वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM 2026 की तैयारियों को लेकर तैयारी सह समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईटानगर स्थित स्टेट बैंक्वेट हॉल में यू मेंटर ऐप एनेमिया मुक्त भारत अभियान और RBSK 2.0 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत और भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शन उद्देश्य विश्व कल्याण का होगा। एक रिपोर्ट।
भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों मंत्रियों का स्वागत किया।
विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया की विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवु ओजुकवु और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है, साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही।
विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता है।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि ये वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग ने 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने युवा पीढ़ी से अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। वे आज ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन सर्कल के अंतर्गत जेपीएस जनरल प्लेग्राउंड में आयोजित पहले लई बांगो सेंट्रल सोलोंग गदे समारोह 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह आयोजन समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को मनाने तथा संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौखिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है, लेकिन उचित रूप से दस्तावेजीकरण नहीं किए जाने पर इनके भुला दिए जाने का खतरा बना रहता है। उन्होंने स्थानीय पारंपरिक प्रणालियों, गीतों, कथाओं, मौखिक साहित्य और पारंपरिक ज्ञान के ऑडियो विजुअल अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इस तरह का दस्तावेजीकरण युवा पीढ़ी को डिजिटल युग के अनुरूप और माध्यमों से अपनी विरासत से जुड़ने और उसे समझने का अवसर प्रदान करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया है कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण विकास का अभिन्न हिस्सा माना जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में आज विभिन्न विवेकानंद केंद्र विद्यालयों में सार्वभौमिक बंधुत्व दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह दिवस शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक संबोधन की स्मृति में मनाया जाता है। राज्य के विभिन्न विकेवी विद्यालयों में उत्साहपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बालीजान, चिंपू, निर्जुली, बंदरदेवा और विवेक विहार स्थित विकेवी भी शामिल है। इसके अलावा राज्य के अन्य विकेवी संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समारोह के दौरान विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के सार्वभौमिक बंधुत्व, सेवा, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में समर्पित भागीदारी के संदेश पर चिंतन करने का अवसर दिया जा रहा है। आगामी जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक यानी ZFM की तैयारियों के मद्देनजर लोअर सुबनसिरी जिला प्रशासन ने अधिकारियों और स्थानीय हॉस्पिटैलिटी संचालकों की एक बैठक गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की। बैठक में महोत्सव से पहले ही आवश्यक लॉजिस्टिक तैयारियों को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। 4 दिवसीय वार्षिक जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक का आयोजन आगामी 24 से 27 सितंबर तक किया जाएगा। इस दौरान लोअर सुबनसिरी जिले में देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों और आगंतुकों के पहुंचने की उम्मीद है। समन्वय बैठक का उद्घाटन करते हुए उपायुक्त ओले परमे ने जिले के सभी हॉस्पिटैलिटी प्रतिष्ठानों को महोत्सव में आने वाले लोगों को उच्चतम स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश जारी किए। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पासांग दोर्जी सोना ने तवांग में आयोजित होने वाले 14वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM 2026 की तैयारियों को लेकर तैयारी सह समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आयोजन के सुचारू और सफल संचालन के लिए सुरक्षा, परिवहन, आवास, लॉजिस्टिक प्रोटोकॉल तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से जुड़े प्रमुख प्रबंधों की समीक्षा की गई। दुबई में भारत महिला क्रिकेट एशिया कप में फाइनल में पहुंच गए हैं। कल सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 40 रनों से पराजित किया। 150 रन के लक्ष्य में के जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 109 रन ही बना सकी। सोनरा अटकर ने सर्वाधिक 22 रन बनाए हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।